नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को बचाने के लिए कर रही है वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध। नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के कारोबार पर नियंत्रण के लिए संसद के अगले सत्र में लाया जाएगा विधेयक, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। और प्रदेश के अधिकतर भागों में कड़ाके की ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, गया, अरवल, जहानाबाद, पटना समेत 18 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान शीत दिवस का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को बचाना चाहती है, इसलिए वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। असम के डिब्रूगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में पुनरीक्षित मतदाता सूची के आधार पर ही विधानसभा चुनाव हुए और कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल एसआईआर के विरोध के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बताया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उर्वरक पर बड़ी सब्सिडी देकर केंद्र सरकार किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग कर रही है।
जो यूरिया हमें महंगे दामों पर विदेशों से मंगाना पड़ता है, हम उसकी भी चोट अपने किसानों पर नहीं पड़ने देते। बीजेपी सरकार सब्सिडी देकर वो भार सरकार खुद उठाती है। भारत के किसानों को सिर्फ 300 रुपए में यूरिया की बोरी मिलती है, उस एक बोरी के बदले भारत सरकार को दूसरे देशों को करीब 3000 रुपए देना पड़ता है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार नकली उर्वरक और कीटनाशकों की समस्या से निपटने के लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक लाएगी। श्री सिंह ने भ्रामक टैग के साथ नकली उर्वरकों और कीटनाशकों की बिक्री पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि बेईमान कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक न केवल किसानों और श्रमिकों के लिए लाभकारी है, बल्कि गांवों के विकास से भी हर तरह से जुड़ा हुआ है।
विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी, और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है, और दूसरी तरफ एक विशाल धनराशि जो प्रस्तावित इसी साल है वह 1,51,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो और उस पैसे से गांव का संपूर्ण विकास हो।
राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। श्री कुमार दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। इससे पहले आज शाम नई दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। श्री कुमार ने जदयू के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों का उल्लंघन कर चलाए जा रहे गुंडा बैंक और सूदखोरी के धंधे पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन कर ऐसे बैंकों का संचालन अवैध है। उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर ऐसे मामलों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम के तहत नहीं है, जो आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, उस तरह के बैंक को हम गुंडा बैंक कह सकते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड नहीं है, गुंडा बैंक हो गया। जो मनी लेंडिंग का काम कर रहा है, लाइसेंस नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल है, तो इस प्रकार के जो हरकतें दिख रही हैं, उन पर काफी प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करने की मुहिम तैयार की जा रही है और हम लोगों ने इस पर कानून में यदि कमी है, कानून कमजोर है या कानून व्याप्त ही नहीं है तो उसके लिए कानून के लिए भी हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाया है।
गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी जबकि शेष पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। पूर्व सैनिकों के लिए 10% और ट्रेड्समैन के लिए 3% तक रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। रेलवे इस महीने की 26 तारीख से रेल किराए को युक्ति संगत बना रहा है। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए 215 किलोमीटर तक की यात्रा किराए में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। वहीं इससे अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर मात्र 1 पैसे की दर से वृद्धि की जाएगी। मेल, एक्सप्रेस और वातानुकूलित गाड़ियों में यह दर 2 पैसे प्रति किलोमीटर होगी। रेलवे के अनुसार किराए में वृद्धि से लगभग 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। और अब आपके लिए बेहद जरूरी खबर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चेतावनी जारी कर व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए घोस्ट पेयरिंग नाम के एक साइबर कैंपेन का इस्तेमाल करने को लेकर लोगों को सचेत किया है। एक रिपोर्ट।
मंत्रालय के अनुसार साइबर अपराधी बिना किसी सत्यापन के पेयरिंग कोड का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर के जरिए अकाउंट को हैक कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी आमतौर पर तब शुरू होती है जब आपको किसी जानकार नंबर से फोटो भेजा जाता है और इसे देखने की अपील का मैसेज आता है। इस मैसेज में एक लिंक होता है जो फेसबुक जैसे प्रीव्यू के साथ आता है और आगे फोन नंबर से जुड़ी एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया की ओर ले जाता है। मंत्रालय ने बताया कि इस तरीके से साइबर अपराधी को बिना पासवर्ड या सिम स्वैप किए पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल जाता है। मंत्रालय ने लोगों से संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने के साथ साथ बाहरी साइटों पर कभी भी अपना फोन नंबर दर्ज नहीं करने की सलाह दी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने गया, नालंदा, समस्तीपुर, मधुबनी, पटना समेत प्रदेश के 18 जिलों में अनेक स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील भी की है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर बहुत कम हो जाने से दिन में भी कनकनी का एहसास हो रहा है। इधर राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में अधिकांश स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत की संभावना नहीं है।
22 दिसंबर 2025 को राज्य के गयाजी, नालंदा, अरवल एवं जहानाबाद जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है एवं राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों सीतामढ़ी एवं शिवहर के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है जबकि राज्य के शेष भाग के जिलों के कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शीत दिवस की चेतावनी के मद्देनजर विभिन्न जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कक्षा 5 तक स्कूलों में पठन पाठन पर रोक लगा दी है। गया और जमुई जिला प्रशासन ने शीतलहर के मद्देनजर 5वीं तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं सारण जिला प्रशासन ने 23 दिसंबर तक कक्षा 10 तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बच्चों को गर्म भोजन परोसने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र दोपहर 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खोले जा सकते हैं। इधर घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर अत्यंत कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे से कई विमान रद्द कर दिए गए। वहीं कई उड़ान देर से संचालित की जा रही है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। राजगीर में नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नालंदा ज्ञान की भूमि है और इस तरह के आयोजन से ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है।
बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई है, इतने सारे साहित्यकार, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी सब जमा हुए हैं यहाँ। नालंदा ज्ञान की भूमि है, नालंदा में ये आयोजन हो, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसको एनकरेज किया जाना चाहिए। हर तरह से जितना उत्साह हम बढ़ा सकें वो हमें बढ़ाना चाहिए और इससे ज्ञान का प्रसार प्रचार होता है, यही हमारी संस्कृति का मुख्य आकर्षण बिंदु ही ये है।
इस अवसर पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर, नालंदा विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। पाकिस्तान ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। यूएई के दुबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 347 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 27वें ओवर में ही 156 रन के स्कोर पर सिमट गई। दरभंगा जिले के पंचोब में शरद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आज मुंगेर जिले का दौरा किया। इस दौरान श्री अमृत ने जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत कुसुम्भा गांव में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने लोगों की समस्याएं सुनी। रोहतास पुलिस ने जिले के अकोढ़ी गोला में 9 दिसंबर को हुई गोलीबारी की घटना का खुलासा कर दिया है। डीएसपी अखिलेश झा ने बताया कि गांजा की लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद में गोलीबारी की घटना हुई थी। इस मामले में अब तक 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सीतामढ़ी के बोखरा प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीनिया टोला में आग से झुलसकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए जलाए अलाव की चिंगारी से ये घटना हुई है। अररिया जिले के जोगबनी में भारत नेपाल सीमा पर गश्ती के दौरान एसएसबी जवानों ने एक महिला को 2 लाख नेपाली रूपये और अन्य आपत्तिजनक सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारतीय सेना के भगोड़े जवान राजबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि आरोपी जवान नेपाल के रास्ते देश से फरार होने की फिराक में था। नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रयाग गांव में अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने गोलीबारी के आरोपी शिवांग को गिरफ्तार कर लिया है। अरवल के जीए उच्च विद्यालय में भारत स्काउट एंड गाइड की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को बचाने के लिए कर रही है वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध। नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के कारोबार पर नियंत्रण के लिए संसद के अगले सत्र में लाया जाएगा विधेयक। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। और प्रदेश के अधिकतर भागों में कड़ाके की ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। गया, अरवल, जहानाबाद, पटना समेत 18 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान शीत दिवस का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।